तथैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौरत्रिशे अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतिं धीवरं जड्डञ्जागुलरोचि साम्विदधतनुपट्टम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम् दामो प्रेम संपुट जिसको मैंने आरंभ किया था उसको संक्षेप में मैं समाप्त करके दूसरा कोई भक्ति के साधन का ग्रंथ आरंभ करूंगा, इसलिए उसको संक्षेप में बतला रहा हूं। बहुत कठिन और बहुत उच्च कोटि का यह भाव है, सब लोग नहीं समझ सकेंगे, इसलिए इसको संक्षेप में बतलाया। राधिका जी ने कृष्ण को प्रेम तत्व का विषय इस प्रकार से बतलाया, प्रेम स्वानुभव संवेद्य और निरुपम है। क्या तात्पर्य है? प्रेम वस्तु अपने अनुभव की वस्तु है और उसकी उपमा नहीं है, वचनों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको समझने की चेष्टा करना या बुझाने की चेष्टा करना, समझाने की चेष्टा करना, दोनों निष्फल है। जब स्वयं प्रेम की उपलब्धि होगी तभी अपने जान सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि प्रेम के होने के बाद भी हृदय में विचार बुद्धि उत्पन्न होती है कि मैं उसको समझाऊंगा तो प्रेम उड़ जाता है। और एक बात है, विचार नहीं करने पर भी प्रेम नहीं होता, कैसे प्रेम होगा? प्रेम क्या चीज है? उसके लिए चेष्टा भी होनी चाहिए, नहीं तो प्रेम होगा कहां से? क्या करने से कृष्ण का सुख होता है? यदि यह विचार ही नहीं हृदय में हो तो प्रेम कैसे होगा? इसलिए कृष्ण को क्या करने से सुख होगा, यही प्रवृत्ति प्रेम है। और जब यह प्रेम होता तो सब कुछ सारा कुछ भूल जाता है, कुछ उसे याद नहीं रहती, तब कैसे समझेंगे जी प्रेम है? प्रेम का जो अनुभव सात्विक व्यभिचारी भाव है, इसके द्वारा कुछ कुछ आदमी समझ सकता है जो इनको प्रेम प्रादुर्भाव। यदि किसी को अष्ट सात्विक भाव हर्ष रोमांच कंप अश्रु पुलक वैर्ण व्यभिचारी भाव इत्यादि न हो तो कोई समझ ही नहीं सकता इसको प्रेम है। और ये होगा जरूर, जिसको प्रेम होगा ये होगा जरूर, निश्चित रूप से होगा। तुमने ये जो कहा, कृष्ण बड़े लंपट हैं और दूसरे दूसरे नौकाओं को प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, राधिका जी कह रही है। यही कारण है कि नायिका के उस नायक की सब प्रधानता है। राम और द्वारका के कृष्ण में भी ये चीजें नहीं है। बहु नायिकाओं से प्रेम है उनका, और होने से वो नित्य नूतन भाव से बढ़ता है। और तो कंठा जब कर देता है, और ऐसे नायक के लिए जब वह दूसरे के पास में जाता है, राधिका को छोड़कर के चंद्रावली के पास में वो नायक जाता है, कृष्ण जाते हैं, तो राधिका जी फिर हमेशा संतप्त होती हैं, और उनको याद आता ही है कि मैं मिलन के समय में क्या क्या उनसे सुख हुआ, उनको कैसे सुख दिया। तरह तरह की चिंताएं करती हैं, और जगत के लोग देखते हैं उनके विरह में पशु पक्षी भी तड़पने लगते हैं विरह। तो ये चीज नहीं होती ही नहीं, यदि बहु नायक निष्ठ कृष्ण नहीं होते तो ये चीज नहीं होती। संभोग में, मिलन में नायक और नायिका, विशेष करके नायिका, त्रिभुवन के सब सुखों को सम्मिलित होने से भी कोटि कोटि गुण सुख लाभ करती है, और विरह अवस्था में भी कोटि कोटि दावानल और विश्व ब्रह्मांड के सब दुखों से भी, कालकूट विश्व से भी ज्वाला में प्रतीत कराता है यह प्रेम। कृष्ण की कृष्ण स्वरूप की एक विशेषता है, प्रेम कृष्ण के अतिरिक्त तो दूसरे में हो नहीं सकता, नारायण में भी नहीं होगा और रामचंद्र इत्यादि में भी नहीं होगा, स्वयं द्वारका के कृष्ण में भी नहीं होगा। क्यों? नारायण, राम और द्वारकाधीश ये भगवान है, भगवत्ता है ना, ऐश्वर्य है, और उनका बहुत कुछ कर्तव्य है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः, ना सब समय है वो सोचते हैं कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसलिए अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा के लिए, और असुरों का दलन इत्यादि बहुत काम उन लोगों को है। किंतु कृष्ण राजपुत्र हैं, उनमें भगवत्ता का अभिमान नहीं है, राजपुत्र हैं नंद बाबा के, इनको कोई चिंता नहीं, पशु चरा गाय चरा रहना, बस आनंद विहार कर रहे है ना। ये कृष्ण में विशेषता है। राम सिंह इत्यादि कितना कर्तव्य उन लोगों का है, ऐश्वर्य में डूबे हैं, और जगत का कल्याण कैसे होगा ये हो, इनको क्या कोई परवाह नहीं, गैया चराते हैं, निश्चिंत ये सब दिया है। मैं संक्षेप में बता, ये सब दिया है राधिका जी, मथुरा नाथ द्वारका पर्यंत वो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, उनको बहुत चिंता है, और ये राजपुत्र होने के कारण विशेष रूप से ये प्रेम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने भी तो असुरों को मारा, कहे कृष्ण ने असुरों को नहीं मारा, एक भी असुर को नहीं मारा, तो कौन मारा, उनके शरीर में जो विष्णु रहते हैं वो असुरों को मारते हैं, इसलिए निश्चिंत परिपूर्ण रूप से है। और ब्रज की गोपियां ही ऐसी हैं जिनको ब्रज जैसा प्रेम होगा कृष्ण में, अपने सुख की तनिक भी लेश कामना नहीं है। क्यों? द्वारका की महिषियां 16,108 कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत नहीं कर सकती। क्यों? उनमें कभी कभी कामना होती है, पुत्र परिवार के लिए चिंता रहती है, गृह कामों के लिए चिंता रहती है। और इनको लोक धर्म, वेद धर्म, जाति धर्म, लज्जा, लोभ, कुछ कुछ भी नहीं, कृष्ण के लिए सब समर्पित है। इसलिए ब्रज के गोपियों जैसा कृष्ण को दूसरा कोई प्रेम नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। लो यो
विज्ञान परंदस्य वरंदन स्वागतम चक्षुरंगितामेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So for the last few days we have been hearing from Prem Samput of Sri Vishnu Chakravarti Thakur. This book is so very exalted and high, and the moods expressed in it cannot be understood by the ordinary persons. Therefore, very quickly we will finish this book in a rapid way, and we will again accept another book that describes what is Bhakti Sadhana. So far we've heard how Srimati Radhika is describing Prem Thakur to Krishna, who has disguised himself as a girl from the heavenly planets. Srimati Radhika continued, Prema is Swasambhavya, means it can only be understood by that person who is experiencing it and not by another. Prema is avachaniya, it cannot be described in words. Prem can only be understood by realization and not by anything else. Only in whose heart that prem has appeared, that person can understand what is prem. Another person cannot. Prem cannot be understood by much deliberation, nor by an absence of deliberation. Either way, prem cannot be understood. But still, unless we deliberate and endeavor how to please Krishna, then prem will also not come. Srimati Radhika continued, therefore, that desire, how I can please Krishna, that prvritti or that tendency is the symptom of prema. Therefore, something we may understand that someone has achieved prem by looking at their various ecstatic emotions like sattvic or vyabhichara, or by astasattvic bhavs. By seeing the astasattvic bhavs or different ecstatic symptoms in someone, we can understand something may have appeared there in the heart of that person, in a heart in which prem has entered. These symptoms must be seen. Srimati Radhika said, you have described Krishna as being a lampa, as a debauchee, but really Krishna is the topmost nayak, he is the topmost hero. Therefore, only he has the qualification to love many, many nayakas, many, many beloveds. The moods that are seen in Krishna cannot be seen in any other incarnation. Therefore, even when he performs apparently abominable pastimes like going to Chandravali and other beloveds, still in that condition, he only remembers the happiness that he experienced when he was with me. Therefore, and also, everyone can see the ecstatic, the topmost of Radhika, and when Radhika experiences that separation, then all the plants, animals, creepers and birds also weep. So therefore, Krishna does perform these pastimes to expand and show the world what is prem. That is why Krishna leaves me and goes to other heroines. So, therefore, for the beloved, the Nayaka, all the happiness when she meets with Krishna, all the unlimited happiness of this world, multiplied millions of times, cannot equal to one drop the happiness that the Nayaka experiences in direct association with Krishna. And all the unhappiness of the world, multiplied millions of times, cannot be equal to one drop the Nayaka experiences in Viraha, in separation from Krishna. Therefore, Srimati Radhika explains, therefore these things can only be seen in Krishna, not in any other incarnation, not in Ram, nor Dwarkadish, nor Narayan. Why? Because they have so much Bhagavat Abhiman. They have so much self-conception that I am Bhagavan. And there is so much opulence in their Swarup. They have many, many duties. Yada yada hi dharmasya. They come here to protect Dharma and to destroy irreligion. They have many, many responsibilities. They have much thoughts, much preoccupation. But Krishna, he is the son of a king and he has no other responsibilities, he has no duties. Only he moves the cows from one place to another. Therefore Krishna is completely nischint, means he has no headache, no worries, no duty, no responsibility.
Huh?
He is completely carefree. Therefore, only Krishna can do these activities with the gopis, others cannot. Therefore, these are not faults in Krishna, this is his qualities. Therefore, even Dwarkadish Bhagavan, he has so many, Krishna and Dwarka has so many responsibilities. So many demons to kill, so many people this and that to do. But Krishna, he has no duties. He never kills any demons. Krishna in Vrindavan, he never kills any demons. Who kills him? Vishnu, situated within the body of Krishna, he kills the demons. Therefore, as Krishna is unique, therefore the Braj Gopis are also unique in the respect that only the Braj Gopis can have that type of unprecedented prem towards Krishna. Even the queens in Dwarka, the Ramanis, they cannot control Krishna completely because they have many, many responsibilities, many children to nourish, household duties. But the gopis have left everything, all types of shame, all types of worldly responsibilities, all fear of the scriptures. They have left everything and completely given everything for the happiness of Krishna.
They
have no children, nothing. Therefore, they can only completely satisfy Krishna.
Though there are husbands, their husbands are there, but no responsibility for them.
No attachment.
Nothing, no attachment. यदि कोई गोपी अथवा तराधा ही स्वयं या कोई गोपी अपने सखी से यदि कहती है कि देखो मुझे कृष्ण के पास ले चलो, किसी प्रकार से कृष्ण से मिलन करा दो, तो इसको काम मत समझो, उसे काम की नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो कुछ कर रही है कृष्ण के लिए कर, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जा रही है, इसलिए उसका ऐसा कहना, अभी राधा जी कहते हैं कि उनके बिना हम मर जाएंगे, हमें मिला दो उनसे, ये कामुकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए है। जो कुछ भी कृष्ण के लिए किया जाए वो काम नहीं, प्रेम है। कृष्ण प्रेम के समुद्र हैं और समस्त गुणों से युक्त हैं। उनकी सठता, चपलता, कुटिलता और उनकी क्या भंडता, न क्या का जो कुछ भी उनकी है, हैं, धृष्टता, ये सठता, ये सब, ये सब प्रेम का ही एक विकार है। कृष्ण चपल, चंचल, कुटिल, दूसरों के प्रति प्रेम करने वाले नहीं होते, तो प्रेम का आस्वादन ऐसा वो नहीं कर सकते, न गोपियां ही कर सकती थी। क्योंकि मान लिया कि कृष्ण राधिका के पास में अभिसार करने जा रहे हैं और बीच ही में चंद्रावली के पास या श्यामला के साथ और या दूसरे किसी के साथ में मिले, अभिधर्म में राधिका जी के पास में नहीं जा सके, राधिका जी खंडित अवस्था में हो गई, रात भर देखती रही नहीं आए। सवेरे आए वो भी नील लोहित रुद्र बनकर आए और ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सीधा तुम्हारे यहां ही आ रहा, ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। यहां पर कृष्ण का ऐसा होने से राधिका को जो दुख होता है, विरह दुख क्यों होता है, कृष्ण क्यों गए उसके पास, इसीलिए तो उनको क्रोध होता है। क्रोध क्यों हुआ, कृष्ण उनके पास में क्यों गए, इसलिए उनसे बातचीत नहीं करते, जाओ उसी के पास में जाओ जहां से तुम आए हो। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वेशधारी जब मैंने देखा ये सब, उसके उत्तर में कह रहे हैं देखो इसमें भी कृष्ण जब दूसरे के पास में जाते हैं तो हमें क्रोध किस लिए होता है, मैं जानती हूं कि दूसरी जगह कृष्ण को सुख हो ही नहीं सकता, गए क्यों, इसलिए मैं कहती जाओ वहीं, यदि वहां जाने से तुमको सुख था तो जाओ, यह भी मेरा क्रोध प्रेम का क्रोध है, कृष्ण को सुख देने के लिए ही है और किसी कारण से नहीं है। कृष्ण आप्तकाम और आत्माराम हैं, इनको किसी गोपी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, काम के द्वारा उनको वशीभूत नहीं किया जा सकता है, यदि गोपियों में काम होता तो वशीभूत नहीं हो सकते, कभी संभव नहीं था, क्योंकि गोपियों में प्रेम प्रेम है, काम नहीं है, इसलिए उनके प्रेम के वशीभूत होते हैं, प्रेम के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। सखी राधिका जी कह रही हैं, वृंदावन में रहकर मैंने यही अनुभव किया, ब्रजरमणियों का जो कृष्ण प्रेम है इसी से कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं, दूसरे से नहीं, इसका कारण हमने पहले बतलाया है। कृष्ण संकेत करके भी मेरे पास नहीं आए, दूसरे किसी के पास में चले गए, इसका कारण विघ्न, विघ्न का कोई दूसरी मिल गई, पद्मा इत्यादि, और कृष्ण को दूसरी जगह ले गई, कृष्ण को उसे सुख होगा, खंडित प्रेम से कृष्ण को सुख नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण वहां जाकर के दुखी हो जाते हैं और राधिका के लिए चिंता करते हैं, राधिका जी जानती हैं इस स्वभाव को, इसलिए ये भी दुखी हो जाती हैं, कृष्ण के दुख से दुखी हो जाती हैं, कृष्ण के विरह में राधिका को जो दुख होता है उसे विश्व ब्रह्मांड सब निमग्न हो जाता है, अरे भाई कोई बात नहीं छोड़ो सुनने दो उसको। इसलिए राधिका जी सोचती हैं, भरे इधर सुन, ओ डोंट सी, कि राधिका जी सोचती हैं कृष्ण कहीं भी जाकर के सुखी नहीं हो सकते हैं, इसलिए राधिका उनको दुख के लिए दुख होता है। पुनः कह रही हैं राधिका जी क्रोधित होकर के कृष्ण कहती हैं, जहां से आए हो उसी नायिका के पास में जाओ, ये क्रोध भी कृष्ण को सुखी रखने की इच्छा से ही होता है और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध भी प्रेम के द्वारा उठा हुआ है। षठ राधिका जी कहती हैं, षठ मुझे प्रत्याग कर वहां गया और उस नायिका के साथ में विहार किया, क्वेश्चन करती हैं, किया आनंद मिला तो तुम सुखी हुए, और कृष्ण भी अपने अंगों में चिन्ह धारण कर अपने दोष को स्वीकार भी करते हैं। इसका कारण क्या? प्रेम एक प्रदीप के समान है, जो नायिका के हृदय को और नायक के दोनों के हृदय को प्रकाशित करता है प्रेम, और निश्चल रूप से प्रकाशित होता है। किंतु मुख से निकलने पर ही वह नष्ट हो जाता है,
जैसे हवा के धूप से बत्तियां भीग जाती है, या कपूर जैसे हवा में उड़ जाता है, ऐसे मुख से निकलने पर प्रेम।
अब कृष्ण की सरसता देखो, कह रहे हैं राधिका जी कृष्ण से, प्रियतमे, जब प्रेयसियां माननी हो जाती हैं तो उनको कहते हैं कि देखो प्रियतमे, तुम ही हमारी सबसे अधिक प्रिय हो, चंद्रावली से मिलेंगे, श्यामला से मिलेंगे, भद्रा से मिलेंगे, और सखियों से, राधिका सबसे एक ही बात कहेंगे, प्रियतमे तुम ही एकमात्र हमारी प्रियसी हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन सी रमणी है जो हमारे हृदय में स्थान लाभ करे, राधिका को छोड़कर के अन्य को क्यों कहते हैं? हमारे साथ भी ऐसा ही कहते हैं, जब मैं मान कर ली ही तो कृष्ण कहते हैं, प्रिय मैं तुम्हारे अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं पा सकता है। अब ये कहते हैं केवल तुम ही हमारे प्राण हो, किंतु क्यों क्यों कहते हैं? जो गोपी जैसी है अपने प्रेम के तारतम्य के अनुसार में कृष्ण के हृदय में स्थान है, प्रत्येक गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम है, यहां तक कि महाभाव भी है, होने पर भी अपने तारतम्य के अनुसार में कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे मिलन होने पर ऐसा करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, राधा जी कह रही है। गोपियों को, गोपियां कभी कभी अपने प्रेम को प्रकाश करती हैं, तो नष्ट हो जाना चाहिए, जैसे प्रकाश करती हैं, यत्ते सुजात चरणं बरुहस्तनेषु भीतासनै प्रियददी महि कर्कशेषु तेनात्मं अठस्तद व्यथतेन किंचित् कृपादिभि भ्रमद्भिर्जभोदां। अपने प्रेम को प्रकाश करती हैं इसके द्वारा, तो प्रेम नष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, उनका प्रेम समर्था है, वो नष्ट नहीं बल्कि और इससे बढ़ता जाता है, वो भी प्रेम का एक चिन्ह है। तुमने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर ठीक दे रहे हैं। रास में कृष्ण सभी गोपियों को छोड़ दिया, और केवल मुझे ही लेकर रमण किए, कृष्ण से वेशधारी देवांगना वेशधारी से कह रहे, और फिर मुझे प्रत्याग कर दिया अंत में। उसका कारण भी सुनो, प्रेम के समुद्र कृष्ण हैं और मुझे ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, सब गोपियों मुझे श्रेष्ठ समझते हैं, इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। मुझको सौभाग्य रत्न दिव्य रत्न सिंहासन में बैठाकर और बहुत प्रेम कर वन से वन में लेकर के अब वन से वन में विचरण किया, और किसी जगह श्रृंगार भट्ट में बैठकर फूल चयन किए और राधिका जी का श्रृंगार किया, स्वाधीन भर्तृका राधा जी यहां पर बनी। और उस समय में किसी भी गोपी को उस समय मन में स्थान नहीं दिया, केवल राधिका जी को लेकर के हैं। उस समय में मन ही मन मैंने चिंता किया, क्या चिंता किया, कृष्ण हमारे साथ में महाप्रेम का समुद्र आस्वादन कर रहे हैं मेरे साथ में, हाय हाय जिन सखियों ने मेरे लिए प्राण छोड़ा, उन सखियों को तो ये प्रेम कुछ अनुभव हुआ नहीं, तो मैं तो कृतज्ञ हो जाऊंगी, इस प्रेम का कुछ तो उनको आस्वादन कराना चाहिए, मैं अकेले जो कर रही हूं ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं सोची जरा ठहर जाऊं तो सखी आ जाएंगी, इन लीलाओं को देख सकेंगी, अब बड़ी प्रसन्न हूं, और नहीं तो मैं कृतज्ञ होंगी। ऐसा सोच करके कृष्ण ने कहा, भाई मैं चल नहीं सकती, जहां हो वहां ले चलो, मैं नहीं चल सकती। और इतने में कृष्ण आ जाएंगे, बस सभी आनंद के साथ में हमारी सहेलियां भी उस आनंद को अनुभव कर सकेंगी। यही चिंता करके मैंने कहा, मैं चल नहीं सकती, जहां हो वहां ले चलो, मैंने इसमें कुछ विलंब हो जाएगा, इतने में सखियां आ जाएंगी, और कृष्ण तो रसिक चूड़ामणि है, उन्होंने क्या सोचा, हमारे भावों को समझ गए, जे ये अकेली रहने से सुखी नहीं है, चाहते हैं कि सखियां आ जाएं, इसलिए हमसे ऐसा कर रहे हैं, किंतु होगा क्या, उस समय यदि आएंगी
सब मानिन्य हो जाएगी,
और हमारा ये देख करके हमारा ये सौभाग्य सब मान्य हो जाएगी, रास होगा नहीं, सब बिगड़ जाएगा। उनको ईर्ष्या हो जाएगी और फिर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, वे हमें भी तिरस्कार करेंगे, इसको भी तिरस्कार करेंगे, दोनों को क्रोध से अपने अपने घरों में चली जाएंगे, और फिर ये रास नहीं होगा। सखी कृष्ण ने और विचार किया, यदि रासलीला न हो, रासलीला की जरूरत क्या है, यदि रासलीला नहीं हो तो राधिका इसके लिए प्रार्थना की थी रास के लिए, हे प्रियतम एक साथ में असंख्य कुलवती गोपियों को क्या तुम आलिंगन एक साथ में कर सकते हो, राधिका जी की इच्छा थी, इसलिए कृष्ण से कहा था, मेरी देखने की लालसा है, मेरी लालसा को पूर्ण तो राधिका जी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते कृष्ण, इसलिए उनकी इच्छा को भी पूर्ण करना है। यदि रासलीला नहीं तो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए क्षण भर के लिए राधिका जी को प्रत्याग कर दूं और कर देने से यह रोने लगेगी है है, और उसमें दूसरी गोपियां देखे हाय हाय ये तो ये भी करिए जैसे मैं दुखी थी ये भी दुखी है, तो उनके प्रति सहानुभूति आएगी, फिर दोनों में मेल हो जाएगा और फिर तो दोनों मिलकर के हमारे साथ में राश करेंगे, अन्यथा राश नहीं होगा और फिर राधिका जी की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, और राश नहीं होगा तो राधा जी सर्वोत्तमा है ये अनुभूति नहीं होगी। लो थोड़ा सा बोलो।
Therefore, Srimati Radhika, speaking to Krishna, who is disguised as a lady from the heavenly planets, she continued. Therefore, Radharani says, therefore, if Radharani or any gopi says to another gopi, Chalo, take me, I want to meet Krishna, I want to see Krishna, then this is not karma. This is not lust. Why? Because everything they do is for the happiness of Krishna. Therefore, the attraction of the gopis for Krishna is not called kaam, lust. It is called prema. Therefore, Krishna is an ocean of prema. He has so many qualities.
What?
I mean, you said Krishna has many qualities, like when he is very restless, he is very cruel, he is very thoughtless.
These qualities.
Unreliable.
But this is good quality. If he is not so, then no mind rush nahi ho sakta.
Therefore, if anyone thinks these so-called faults are faults of Krishna, they mean they have no prem. These so-called faults are not faults, they are qualities. And Srimati Radhika describes why. For example, Krishna has arranged to meet with Srimati Radhika. But on the way, for Abhisar, Krishna meets another gopi, like Chandravali, Saivya, anyone.
Is bhav ka jaisa
kirtan hai? The whole morning, the whole night, Srimati Radhika is waiting and lamenting. And early in the morning, Krishna comes, looking like Nilahi, like Mahadev, because his eyes are very red. That time, Radhika asks, where have you been? And Krishna directly tells a lie, falsity. Oh, I came directly here. I have not come from anyone else. Then Srimati Radhika becomes even more unhappy. Despite meeting with Krishna, she feels more separation, and in mind, she begins to become angry with Krishna and abuses him. Why? Radhika is explaining her own mind. Radhika says, I became angry because I think, why he went there? Because I know if he goes to any other gopi, he cannot experience the happiness that he gets in my association. Therefore, the anger that I display is called prem krodh. It is simply a manifestation of prema, because Radharani is thinking he cannot experience full happiness when he goes there. Then Krishna disguises the gopi and goes, yes, yes, I saw that also. Therefore, Krishna is atmaram aptakam. He is self-satisfied and has no unfulfilled desires. Radhika is saying, he is never controlled by lusty desires. Srimati Radhika says, by staying in Vrindavan, I realize this, that Krishna is never controlled by lust. He is only controlled by pure prem. That's why only the gopis of Vrindavan can control him and no one else. Therefore, even when Krishna comes to meet me and there is some disturbance caused by other gopis, I become angry because when I see Krishna's dissatisfaction, when I see his unhappiness, his unfulfilled, his unfulfillment, then I become unhappy and angry at that. That Krishna has not tasted full happiness. Therefore, my anger is only for his happiness. Therefore, I become angry, Radhika is saying. And I say, If you experience so much happiness with that Nayaka, that other gopi, then go away, go back to her. When Krishna comes, even with the marks on his body from associating with other gopis, I become angry. I say, you debauchee, you characterless person, get away from here, go back to that other one. But Krishna in front of me is accepting all his faults. Why? Prema is like a lamp. Prema reveals the innermost intentions of both the beloved, the Nayak and the Nayaka, the hero and the heroine. Their hearts are revealed by the lamp of Prema. But if someone says, if Prema is spoken, I love you, that Prema is finished. Like camphor, if the windows are open, that the smell of camphor is lost. Therefore, when Krishna says to the other gopis, oh, all the gopis, Krishna says, you are my most beloved. Apart from you, I don't love anyone else. Therefore, Krishna does not just do this to one gopi, he does it to all gopis, and he even does it to me. Why? Why does he do this? This is not Krishna's fault, because all the gopis have so much anurag, attachment to Krishna, and each gopi has controlled Krishna up to that amount of anurag they possess, even after Madanakya Mahabhav. Therefore, Krishna...
Not Madanak. Only Bhav,
Mahabhav.
Madanak is not in any gopi. Only Shmatira.
Therefore, because all possess anurag up to the level of Bhav, therefore, Krishna's meeting with them is not his fault. This is his quality, because all have captured him according to their bhakti. Therefore, another doubt may come. Well, if prem is not spoken, then sometimes the gopis manifest that prem, like in Bhagavatam, Desati Sujata Chanaburu Hustanesha. Then the gopis express, oh Krishna, we are not satisfied with meditating upon your feet. Your feet should come directly upon our bodies, but we are fearful because our bodies are very hard. Then the gopis express their prem. Therefore, is the prem of the gopis not being dissipated by expressing their heart? Srimati Radhika says, no. This is not a fault of the prema of the gopis. It is simply a symptom of their prema. Because their prema can never be diminished. It can never be destroyed. Then Radhika explains, listen. In my own life, Krishna performed rasa with all the gopis, but he left everyone for me. Why? Krishna is an ocean of prema. And all the gopis at that time were thinking that we are also the best, we are all the topmost. Therefore, Krishna has no fault because he took me away from all the other gopis and he sat me on the Singhasan, the throne of pride, greatness, and in my independence. He gave me such honor, such a position. And at Sringabhat, again we meet, and he decorated me with his own hands, like Swadin Bhandika. Radhika said, like a Nayaka who has controlled Krishna completely. He decorated my hair with his own hands. At that time, Krishna had no thought, no consideration, or no memory for any other gopi whatsoever. But Srimati Radhika thought, I could not tolerate that. Because all the other sakis, they have given everything, their life and soul, for my seva. Therefore, how I alone can drink this nectarian single association with Krishna. Alone, how I can drink this ocean of prema alone and not think about all my friends. Radhika said, that means I will become afflicted by the fault of ungratefulness. Therefore, Radhika said, I could not tolerate this thought. Therefore, Radhika said, I told Krishna, oh, I cannot walk anymore. You can carry me wherever you like. Because Srimati Radhika had a desire that all should be able to taste this happiness of association with Krishna. And Krishna is Rasik Shekha, the crest jewel of heroes. Therefore, he could understand the mind of Srimati Radhika. Therefore, Krishna thought in his mind, alone, Radhika cannot be happy with me. But if all the other gopis can meet me with Radhika there, then she will be happy. Krishna thought, but if all the other gopis come and find me in this condition, alone with Radhika, then all the other gopis will become so much envious. They will become so much manini, so much angry. And out of anger, they will all return to their homes and there will be no Rasleela. Therefore, neither my desire will be fulfilled, nor the desire of any other gopi, and all will be cheated of Ras. Therefore, Radharani, then there will be no Rasleela. Then Srimati Radhika asked, then what is the necessity of Rasleela anyway? Because Krishna had a desire, therefore on his flute he called all the gopis. But Krishna knew that Radharani wanted to be, Krishna wanted to be embraced by all the gopis. And Krishna's desire was to perform Ras. Therefore Krishna thought, I will fulfill the desire of Radharani to meet with all the gopis. Therefore, in Krishna's mind came the thought, I will leave Radharani only for a second. And when all the other gopis come, they will see Radharani's lamentable condition, and all will weep and feel so much
sympathy
for Radhika. Then when I come, there will be Rasleela. My desire will be fulfilled, Radhika's desire will be fulfilled, and everyone's desire will be fulfilled. That's why Krishna's leaving me at Rasleela is not a fault of Krishna, it's his quality.
Very good.
Rajani Jani Ka Guru Jagada Radha Kashaita Mavana Masa Nimesam.
How beautiful! Git Govindam. What I told parallel to Radhika's mood. Smati Radhika is telling when Krishna came in the morning, happened some spot, and Radhika became
angry.
And she is telling, oh, Krishna, you are so beautiful. By your crooked eyes, you can take the heart of all the gopis. Really, it is so. But very, very worry, very worry. O Madhav, he Keshav, Madhav and Keshav, oh, you have decorated my hair. Oh, that very Keshav and Madhav, oh, beloved of all, not Lakshmi only, to all. Oh, at once he should go away. Don't tell lie. I know everything, your body. Telling everything. Oh, you should go to the same gopi who can take your all disease or kam rog or anything. Why you have come to me? Oh, you have not slept in whole night. Your eyes are telling because reddish. And you are somewhat like feeling idleness. Lazy. Or unka chinne bhi main dekh rahi hun. I am saying also. वो एट वंस गो अवे। नई सजागरण से रतनारी बनी सखी, ये हैं आंखें रह रह कर झप उठती हैं, मृदु पलकों की पांखें छलक रही अनुराग माधुरी, अलसाई को रेशे वह कौन बधी सी झलक रही है रेशम के से डोरे। हे माधव हे कमल बिलोचन बनमाली, रसभीने अपनी व्यथा हारणी के ठिक जाओ, हे परलीने। That I told all these things. So this is very, very confidential. यहाँ पर माधव जो कहा धाव, oh that is not पति। पति होते तो क्या वंचना करते, नहीं करते। यहाँ पर यथार्थ में माँ श्री राधिका धाव उनके ही केवल प्राण प्रियतम है, और जो वेशभूषा धारण कराते हैं वो और सब ठीक है। Then come to the point. इन भावों को हम सुनने के योग्य नहीं है, तभी मैं कह रहा हूं एक बार सुन लो जो आज तक कभी नहीं सुना जीवन में। ये शुड हियर दैट यू हैव नेवर हर्ड इन योर लाइफ एंड नेवर यू विल हर्ड इन योर होल लाइफ। सो यू शुड हियर वेरी पेशेंटली एंड देन मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट कम डाउन फ्रॉम श्रद्धा निष्ठा रुचि। आई विल टेल यू from tomorrow or day after tomorrow how to achieve this object. जब राधिका जी को छोड़कर और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, यही सब सोच करके जो बतलाया अंतर्ध्यान हो गए, उसमें भी कुछ कारण है। गोपियों को अपने अपने सौभाग्य का मत था। क्या है श्लोक? तासाम
आविर्भूत सॉरी
ना, तुम रहो, तुम्हारे ये सब विषय नहीं, तुम्हारा विषय ही नहीं है ये, तुम रखो मुख बंद।
तासाम तत् सौभाग्यम् अदम् वीक्ष्य मानं च केशव प्रसादाय प्रसमाय तत्रैव
अन्तर्ध्यायते। उस समय में और गोपियों को के साथ में जो नित्य करने लगे, उन गोपियों का सौभाग्य का मद हो गया कि कृष्ण की सबसे हम ही प्रियतमा हैं, और राधा जी को मान हुआ सबके साथ और हमारे साथ एक ही प्रकार, राधिका को मान हो गया, इसलिए उन लोगों के मान को दूर करने के लिए सौभाग्य मद को और राधिका के मान को प्रसादन करने के लिए, उनका मान रखने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तत्रैव अन्तर्ध्यायते। उस समय में अंतर्ध्यान हो गए राष्ट्र। तो कृष्ण को राधा जी का सर्वश्रेष्ठत्व दिखलाना था। राधा जी हमारी सबसे प्राण प्रिया है, उनके अतिरिक्त हमारे किसी कामना को और नहीं पूरा कर सकते। उनका गर्व दूर हो जाए और राधा जी भी सुप्रसन्न हो जाए, उनका मान भी रख लें। अभी कल हम लोग जाएंगे सेवाकुंज में। सेवाकुंज का स्थान है किस लिए? श्रीमती जी के मान भंजन लीला का स्थान है, वहीं पर उनको प्रसादन किया। और श्रृंगार भट्ट में जाएंगे, स्वाधीन भक्ति का रूप में वहां पर राधिका जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और जमुना जी का यह पुलिन है जहां फिर सब लोग मिलकर के रास किया। तो राधिका और गोपियों के हृदय में जो ये गर्व था कि मैं ही सबसे कृष्ण की प्यारी हूं, यह गर्व दूर करना और उनको अनुभव कराना यह कि राधिका का प्रेम हमसे कोटि गुण बहुत अधिक है, यह अनुभव स्वयं करें और उनका मान दूर हो जाने पर सम्मिलित होकर के राधिका जी के साथ में रास करेंगे। तुमने कहा जे कृष्ण ने बचपन से ही एक पुतना राक्षसी को मारा और वृषभ को मारा, सांड को मारा, गाय की जाति को मारा, बकासुर बगले को मारा, बत्सासुर और बेटी लड़की स्त्री को मारा, बात नहीं ठीक। कृष्ण ने बक की आकृति नामक एक अरिष्टासुर का वध किया, वृषभ सांड का रूप धारण करके आया, और बकासुर बगला नहीं था बल्कि बकासुर था, और अघासुर वो अख का प्रतिमूर्ति कंस का सखा अघासुर था, और बत्सासुर बछड़ा नहीं था गाय का, वो असुर था, और पुतना राक्षसी थी, उसकी कृष्ण ने हत्या की। यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो इसमें दोष नहीं है। कृष्ण ने स्वयं अपने लिए कहा था जो बचपन से ही क्रूर और सबको मारने वाला हुआ, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि सज्जन पालन कारणी विष्णु शक्ति जोग माया प्रगटित होकर के विष्णु के द्वारा असुरों का संहार क्रिया करती हैं। चैतन्य चैतामृत में भी ऐसे है, स्वयं भगवान कर्म नहीं भार हरण स्थितिकर्ता विष्णु करें जगत पालन इत्यादि। ये सब सुनकर के कृष्ण चमत्कृत हो उठे। राधा जी का ऐसा विचार जब सुना तो कृष्ण बड़े चमत्कृत हो उठे और फिर बोले, राधे तुमने प्रेम का जो लक्षण कहा मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसे प्रेम का केवल तो तुम ही उदाहरण हो और दूसरा जगत में नहीं हो सकता, केवल तुम ही हो। ये सब तत्व तो कोई भी नहीं जानता तुम्हारे, मैं भी नहीं जानता था, आज मैं समझा। आज मैंने इस बात को समझा। प्रिय सखी, प्रियतम का दोष सभी गुण प्रतीत होते हैं, किसके लिए? प्रियक प्रेमी के लिए। तो प्रेम का जो लक्षण बताया वह तुम्हारे में ही है और दूसरा जगत में कोई उदाहरण नहीं है प्रेमिक का। तभी मुझे एक बात और पूछनी है, अब ये कल हम व्याख्या करेंगे, आज यहीं तक रहे। एक कृष्णदास कीर्तन करो।
Then Srimati Radhika continued. Then why Krishna disappeared from the Vastali? Because Krishna could understand that all the gopis had the false ego that we are also as fortunate or as qualified as Radhika. So Srimati Radhika also had angry mood, a sulky mood towards Krishna. Why is he treating me the same as others? Therefore, in order to break the false pride of the other gopis and to fulfill the desire of Radhika, therefore, to please Radhika and to break her sulky mood, to do both these things, Krishna left the Rasthali.
Any Radhika Kirtan.
Therefore, Krishna should show the world that Radhika is topmost. And if he had not have disappeared from Ras, then how the world could know that Radharani is the topmost. Therefore, Krishna showed that out of everyone, only Srimati Radhika can fulfill my desire. Tomorrow we go to Seva Kunj. What is Seva Kunj? That is Man Bhajan Lila Stadi, the place where Krishna performed the pastime of breaking the pride of Radhika. Then we go to Srinivasapuram, where Krishna pacified Radhika by decorating her. And last we go to Dishamir, the place of Rasalila. Therefore, by this pastime of disappearance, all the other gopis will understand that Radharani's prem is the topmost. Therefore, Krishna himself before had criticized himself, saying, Krishna is a very bad person. He killed the lady, he killed the cow, he killed the calf, he killed an innocent snake. But Srimati Radhika said, no, it's not like that. Vrishasura was a bull, but he is not a bull, he was only a demon in disguise. Bakasura was not a crane, he was a demon, as well as Agasura, he was sin personified. Vatsasura was not an innocent calf, he was a demon, and Putana was a rakshasi, a witch. Therefore Krishna, in order to protect the sadhus, the sadhyans, Yogamaya arranged that Vishnu, inside the body of Krishna, killed the demons. But Krishna himself never killed anyone. Hearing all this, Krishna himself became astonished and said, O Radharani, the symptoms of prem that you have described are present only completely in you. I could not understand any of this before, but now I can understand. That to the beloved, the faults of the Priyatam are not faults, they are simply qualities.